ओम शांति। विदेश में कभी एक बहुत महान कलाकार कहो या फनकार कहो या आर्टिस्ट, जो कि टाइट रोप वॉकिंग करता था, दो बड़ी बड़ी इमारतें उसके बीच में एक रस्सी और उस रस्सी पर वो चलता था। इसका नाम था कार्ल वैलेंडा। तो वो जो कार्ल वैलेंडा था, वो नीचे कोई सेफ्टी नेट भी नहीं रखता था। हजारों लाखों लोग उसको देखने के लिए आते थे और दो बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, उनके बीच में रस्सी और उस रस्सी पर से उछल के दिखाता था। ऐसा उसने पूरी जिंदगी भर किया, जब वो जवान था तब भी किया, जबकि उसकी उम्र 70 की हो गई तब भी वो करता रहा। उसकी मृत्यु 78 में हुई, 1978, तब उसकी उम्र 73 थी। और एक समय जब वो इस तरह चल रहा था प्यूर्टो रिको अमेरिका में, अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब हॉस्पिटल पहुंचा, ब्रॉड डेड, मर चुका था, क्योंकि बहुत ऊंचाई से गिरा था। उसकी जो पत्नी थी, उसका इंटरव्यू लिया गया था कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, और पूछा गया कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी आश्चर्य ऐसा हुआ कैसे, पर एक बात मैंने नोट की, मेरा जो पति था इतने वर्षों से रस्सी पर चलता था, कभी उसको जरा भी शक नहीं था अपने ऊपर, पर जैसे इस बार वो चल रहा था, अंतिम जो उसका चलना था, इस बार उसके अंदर थोड़ा सा डर था। क्योंकि हर आर्टिस्ट जब भी कोई प्ले करता है, सबसे पहले मन में देख लेता है, जैसे कोई गीत गा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, या कोई डांस कर रहा है, तो वो एक चित्र, या फिर क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जितने प्लेयर्स होते हैं उनको एक बात सिखाई जाती है कि मन में देखे कि मैं जीत रहा हूं, मन में देखना कि मैं वो कर रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, पहली बार मेरा पति जहां पे तार लगी हुई है उसको जाकर उसने चेक किया कि सब ठीक ठाक तो है ना, इसके पहले कभी उसने ऐसा चेकिंग नहीं किया था। कितनी भी बड़ी इमारत हो और कितनी भी बड़ी तार लगी हो, उसने कभी जाकर देखा नहीं, ये पहली बार। मुझे लगता है शायद उसके गिरने के पीछे पावर ऑफ निगेटिव थिंकिंग था। ये एक नया शब्द है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तो सबको पता है कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव हो जाता है, पर एक दूसरा भी है कि पॉजिटिव नहीं सोचो तो सफलता नहीं होती, असफलता होती है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि उस मन में इस अंतिम बाजी में एक निगेटिव भाव आ गया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बाकी सारी व्यवस्था समान थी, परंतु वो निगेटिव उसके अंदर ऐसा समा गया इस बार कि जा जाकर उसने चेक किया जो कभी उसने चेक नहीं किया था। और ये जो उसकी अंतिम युद्ध कहो, लड़ाई कहो, या प्ले कहो, बाजी थी, इसमें चलते चलते वो गिर गया। इसको उसने कहा कि ये शायद वो इस बार नहीं देख पाया अपने आप को चलते हुए, जो कि वो पहले ही देख लेता था। उसको कहते हैं मेंटल इमेजरी, मानसिक मानस चित्र बना लेता था कि मैं जीत चुका हूं, मैं चल रहा हूं, पर इस बार उसने नहीं बनाया। इस बार उसने वो पॉजिटिव थिंकिंग का आधार नहीं लिया, इस कारण से वो इस बार गिर पड़ा और मर गया। तो इतना सूक्ष्म है नकारात्मक विचार जो है, बहुत गहरे होते हैं। एक बार किसी के लिए, या खुद के लिए, या किसी के लिए निगेटिव घुस गया, कितना योग लगाना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए, कितना समझाना पड़ता है, कितने उसके गुणों की चर्चा, गुणों को गिनाना पड़ता है, फिर भी मन मानता है क्या कि ये बहुत अच्छा है। एक बार मान लिया कि इसने मुझे धोखा दिया है, अब कितना भी उसको समझाओ मन को, वो निकलता नहीं है जल्दी। कल की अव्यक्त वाणी वृत्ति पर है। किस पर है? वृत्ति। वृत्ति में क्या समाया हुआ है? गहरे तलों में, वृत्ति के गहरी परतों में क्या समाया हुआ है? उसी के आधार से प्रकंपन होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, और उसी के आधार पर वायुमंडल निर्माण होगा। तो किस तरह का वायुमंडल हम निर्माण कर रहे हैं वो निर्भर करता है किस तरह के प्रकंपन हम छोड़ रहे हैं, और किस तरह के प्रकंपन हम छोड़ रहे हैं वो निर्भर करता है किस तरह की वृत्ति है, और वृत्ति भी निर्भर करती है संकल्प पर, और संकल्प भी निर्भर करते हैं भावनाओं पर। बाबा ने कहा तुम्हारी वृत्ति शुभ हो, तुम्हारी वृत्ति अच्छी हो, तुम्हारी वृत्ति में सच हो, तुम्हारी वृत्ति रूहानी हो, तुम्हारी वृत्ति शक्तिशाली हो। तुम्हारी वृत्ति शक्तिशाली, रूहानी, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ, इतने शब्द प्रयोग किए, तब कहीं जाकर उस तरह के वाइब्रेशंस, उस तरह के प्रकंपन होंगे और उस तरह का वायुमंडल का निर्माण होगा। और ये काम थोड़ा कठिन है, परंतु क्या कहा बाबा ने, सफलता हुई पड़ी है ऐसा ही समझो, पास तुम हो चुके हो, पहले ही टीचर ने बता दिया है, परंतु है तो कठिन, इतना आसान नहीं है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, ये सफर बहुत ही कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। बहुत कठिन है, पर टीचर्स को पापा ने क्या कहा, बाप दादा कंबाइंड है, कॉमा, सदा कंबाइंड रखो। क्या कहा? बाप दादा कंबाइंड है। बात पूरी हो गई, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, परंतु फिर कहा कि कंबाइंड रखो, मतलब शायद नहीं रखते हो, बाबा को भी संदेह है। क्या बनना है, पांचवें ऑनर बनना है या 33 मार्क लेने वाले बनना है? क्या बनना है तुमको? ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत ही कठिन है, ना उदास हो मेरे हम सफर। बाबा ऐसा नहीं कहते कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, बाबा ऐसा नहीं कहते कि बातें नहीं आएगी, बाबा ने ऐसा कहा ही नहीं कि पेपर नहीं आएंगे, पेपर आएंगे, बातें आएंगी, परिस्थितियां आएगी, पर निश्चय हो, ये तो निश्चित है। क्या बात निश्चित है? सब पास हुए ही पड़े हैं, सफलता हमारी ही है, कल्प कल्प के विजयी हो। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, ये है अगले मोड़ पे मंजिलें, मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत ही कठिन है, मगर क्या, ना उदास हो मेरे हम सफर। तो कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी बाधा हो, कितने भी पेपर्स आए, परंतु हार नहीं माननी। क्या करना है? गहराई में जाना है, नहीं तो ऊपर हाथ में क्या आएगी, केवल मछलियां पकड़ने नहीं आए हो यहां, क्या पकड़ने आए हो आशीष भाई? माल, हीरा, नीचे है खजाना सारा। तो चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, फिर भी ना उदास हो मेरे हम सफर। तो एक मिनट अलर्ट होके बैठेंगे और याद करेंगे कि बाबा ने कल की मुरली में क्या क्या सुनाया, उसके बाद हम मुरली रिवीजन चालू करेंगे।
दिल ना
किसने किसको देखा कल की मुरली? बाबा कौन है? शक्ति का सागर। योग में ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि सागर है और मैंने उसमें छलांग लगाई है और सागर की परते हैं। यहां ज्ञान है, यहां प्रेम है, शक्ति है, यहां धैर्य है, आशा है, उत्तर है। वो उत्तरों का सागर है, वो आशा का सागर है, वो धैर्य का सागर है, वो निर्मोह का सागर है, नष्टो मोह का सागर है। और जैसे जैसे मैं उसमें डूबता जा रहा हूं, मैं भी जैसे सागर है वैसे बनता जा रहा हूं। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ये। सागर में क्या करना है? अमृत वेला जंप, छलांग मार देनी। वैसा स्प्रिंग बोर्ड होता है ना, स्विमिंग टैंक में बोर्ड होता है ऐसा, इधर स्विमिंग टैंक होता है, यहां पर खड़े रहते हैं और यहां से जंप लगाते हैं। ये हिलता है, स्प्रिंग बोर्ड इसको कुछ नाम है, तो यहां से कूदते हैं नीचे। तो वैसे मधुबन है, यहां से कूदो। तो इस सागर में डूब जाना है। तो कौन है बाबा? शक्ति का सागर और प्रेम का सागर। किसको देख रहा है? स्नेही आत्माओं को देख रहा है, सहयोगियों को देख रहा है, साथियों को देख रहा है, लाडलों को देख रहा है, सिकिलदों को देख रहा है। और देखकर क्या कर रहा है? खुद ही अर्चित हो रहा है। सबसे पहली बात जो मुरली में आई, क्या करो? डेट फिक्स करो। कौन सी? समान, संपन्न और संपूर्ण। बच्चे बाप से पूछते हैं कब प्रत्यक्ष होंगे, बाप बच्चों से पूछते हैं आप बताओ कब प्रत्यक्ष होंगे। तो अपनी ही डेट फिक्स करना अर्थात टारगेट रखना, अपनी ही डेट फिक्स करना अर्थात एक लक्ष्य रखना कि मुझे कब तक ये काम करना है। जैसे सुखधाम जब बन रहा था तो दादी प्रकाशमणि ने सबको कहा था कि इस तारीख तक वो पूरा हो जाना चाहिए। फला फला तारीख जो वहां लिखी है उस तारीख तक वो पूरा हो जाना चाहिए, उसकी ओपनिंग करनी है बस। अब करनी है मतलब सबको करना ही है, कैसे भी करके करना है, उस तारीख तक वो पूरा हो जाना चाहिए। जैसे ही टारगेट लक्ष्य एम सामने आ जाता है, सारा पुरुषार्थ उस अनुसार होने लगता है। उसी तरह जीवन में यदि कोई भी लक्ष्य अगर रखा जाए, कोई भी डेट फिक्स कर दी कि ये तक मुझे करना है, तो वो प्रयत्न वो चेष्टा साधारण नहीं असाधारण बन जाती है। इसके लिए एक होता है छोटा छोटा, जैसे आज सारे दिन भर का लक्ष्य, एक तो डे का, दूसरा है हफ्ते का, तीसरा है मास का, और फिर 6 मास का या 1 साल का। आज 18 तारीख है, 18 जनवरी तक का कुछ तो लक्ष्य अपने आप ही मन में रखना है एक, कि मुझे क्या करना है अगले तीन मास क्या करना है। यह तो थोड़ा बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला आज सारे दिन भर क्या करना है। बहुत सारी माया आएगी, बहुत सारी परिस्थितियां आएगी। बाबा ने कहा पेपर आएंगे, बाबा ने यह तो कभी कहा ही नहीं कि पेपर नहीं आएंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहला काम डेट, मन को जो कुछ बताया जाता है मन उसी अनुसार काम करने लगता है, पॉजिटिव या निगेटिव। जैसे कोई एक विदेशी भारत में आया, एक ज्योतिषी से मिला, उसने कहा मेरी मृत्यु की डेट बताओ, तो उसको लगा ये तो पार्टी बहुत माल वाली है, तो उसने एक डेट बता दी 3 मास के बाद की, कि इस डेट को इतनी तारीख इतने बजे तुम जाओगे। वो विदेशी बेचारा, उसने मान लिया वो बात, विदेश में गया और दिन रात अब उसके सामने वही डेट और वही तारीख, सोच रहा है उसी के बारे में, दिन रात सोच रहा है। और जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है, अपने आप को समेटते जा रहा है, अपने कारोबार को, सब कुछ। और जिस दिन वो आया, सुबह से मन की तैयारी कर ली, और जैसा वो समय शाम का आया, शरीर छोड़ दिया। शायद वो नहीं आया होता और नहीं सुना होता तो नहीं हुआ होता। इसका मतलब ये नहीं ज्योतिष ने जो कहा वो सही कहा, उसने संपूर्ण विश्वास रखा और उसके अवचेतन मन में वो बात समा गई, और अवचेतन मन ने काम करना चालू कर दिया। क्योंकि संकल्प प्रकृति में जाते, संकल्प और प्रकृति की रिएक्शन और घटनाओं का निर्माण। मैं सोचता हूं मैं गरीब हूं, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन का प्रक्षेपण होता है वायुमंडल में। मन जो सोच रहा है वही विचार बाहर जा रहे, आकर्षण का नियम काम कर रहा है, उसी तरह के सिमिलर विचार जो वायुमंडल में उनको आकर्षित करता है, दोनों मिलते हैं, और ये सारी कायनात क्या करती है, षड्यंत्र करती है। द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, षड्यंत्र करती है तुम्हारे उस संकल्प को साकार करने के लिए। इतना बड़ा रास्ता है, यहां एक पत्थर रखा है, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, यहां सोचता है मैं इस पत्थर को नहीं टकराऊंगा, टकराने की कोई बात ही नहीं है, पूरे रास्ते से वो जा सकता है, इतना खुला रास्ता है। पर सोचता क्या है, मुझे इस पत्थर से नहीं टकराना है, और जाके टकरा जाता है, जबकि इधर से जा सकता था, पर उसका वो संकल्प उसको धीरे धीरे आकर्षित करके लेके गया। वो यहां जा रहा है, कह रहा है नहीं 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 नहीं, और टकरा गया। मन किस तरह काम करता है उसको सीखना है, समझना है। कितने बार प्रतिज्ञा की, मधुबन में आने के बाद तो महाभयंकर प्रतिज्ञा करके जाते हैं सब, बाबा की कुटिया में बड़ी बड़ी, वहां जाके कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहला काम, 8 बातें बाबा ने मुरली में बताई है, सबसे पहला काम क्या करो, डेट को फिक्स करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, छोटे छोटे लक्ष्य रखना है। कल एक घंटा वेस्ट कर दिया था, आज लक्ष्य रखेंगे वो काम आज नहीं करेंगे, नो वेस्ट। कल किसी से व्हाट्सएप पे चैट करने में टाइम लगा दिया, एक घंटा बात करने में लगा दिया, या कुछ देखने में लगा दिया, या खड़े रहकर दूसरों की बातें सुनने में लगा दिया, टाइम वेस्ट हो गया ना, अंदर घुस गया कितनी सारी बातें घुस गई, आज वो नहीं करेंगे। तो पहला काम डेट फिक्स, दूसरा लक्ष्य और लक्षण। जैसे लक्ष्य होगा उसी तरह लक्षण आएंगे। लक्ष्य बहुत ही छोटा रखा है, आज मैं अच्छा पुरुषार्थ करूंगा, ये लक्ष्य रखा है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य जो हो बहुत पर्टिकुलर हो, पर्टिनेंट हो, फिजिबल हो, प्रैक्टिकल हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही ऊंचा, ऐसा ऊंचा रख दिया कि उसको प्रैक्टिकल का कुछ है ही नहीं। उसने दिन भर काम किया, आज रात को लेट हो गया, सोचा अभी 2 बजे उठ के अभ्यास करता हूं अमृत वेला। बाबा ने इस मूल्य में यह भी कहा, अमृत वेला बाप दादा सुनते, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं बच्चे, बाप दादा खुश है ऐसे संकल्प सुनकर। पर लक्ष्य और लक्षण समान हो, तो लक्ष्य ऊंचा हो परंतु वो ऊंचा लक्ष्य प्रैक्टिकल हो। ऐसा नहीं कि उसने किया तो मैं भी करूंगा, वो उसको देखा वो 2 बजे उठ रहे हैं, मैं भी उठता हूं, पर उसकी सेवा अलग है तुम्हारी सेवा अलग है। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हो तुम भी वही कर सकते हो, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। तो लक्ष्य ऊंचा तो हो परंतु वो व्यवहारिक हो, व्यवहारिक लक्ष्य हो जो कर सके। और पहले तो कम टाइम के लिए रखना है, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। तो लक्ष्य और लक्षण, जब लक्षण लक्ष्य के जैसे हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा, बाबा ने कहा। तीसरी बात है एडिशन। कौन सी एडिशन करो पुरुषार्थ में? बाप दादा ने सभी बच्चों का पुरुषार्थ देखा, सभी बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, सभी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे, तीव्र पुरुषार्थ करना समय की आवश्यकता है, पर एडिशन कौन सी करनी है? दृढ़ता लानी है। किसमें? पुरुषार्थ में नहीं, तीव्र पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं, पुरुषार्थ में तो ऑलरेडी तीव्रता है, पर उस तीव्रता के पुरुषार्थ में अब एक एडिशन करनी है। वो कौन सी? दृढ़ता। दृढ़ता अर्थात करना ही है, करके ही रहूंगा, करके ही छोड़ूंगा, झोंक देना अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे राणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा कर ली थी? महाराणा प्रताप ने, घास पर सोऊंगा, सूखे कंद मूल फल खाऊंगा, बिछोने पर नहीं सोऊंगा जब तक अपना स्वराज्य, जब तक अपना राज्य मुझे नहीं मिल जाता तब तक। यही भूमि है। तो एडिशन करना है किसकी? तीव्रता की, दृढ़ता की, तीव्रता में। चौथा सेल्फ चेकिंग। क्या चेकिंग करो? क्या मेरा पुरुषार्थ सदा तीव्र रहता है? सदा, सदा अर्थात हर स्थान में, हर समय, हर परिस्थिति में, हर जगह। मधुवन में है तब तीव्र है, वहां जाते ही खलास। सुबह सुबह तीव्र रहता है, शाम को तीव्र रहता है, दिन भर में क्या होता है खुद ही नहीं समझ में आता है। पुरुषार्थ कहां गया? पुरुषार्थ शब्द भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। सदा, बाबा ने कहा इसकी चेकिंग करो कि मेरा पुरुषार्थ सदा तीव्र है, सदा। फिर पांचवा, तीन प्रकार की सेवा। कौन कौन सी विठल भाई? तीन प्रकार की कौन कौन सी सेवा है? मनसा वाचा और कर्मना, नहीं चलन चेहरा। तो मनसा से क्या करो? अनुभव कराओ। वाचा से क्या करो? ज्ञान के खजाने का परिचय दो। और चलन चेहरे से क्या करो? चलन चेहरे से जो बताएगा उसको इनाम। पूरा बताओ, चलन चेहरे से क्या करो? चलन चेहरे से क्या करो? चलन चेहरे से क्या करो? संपूर्ण योगी जीवन का, कहां पर है आवाज? संपूर्ण योगी जीवन का क्या? प्रैक्टिकल। और आगे, संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप में अनुभव कराओ। संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप में अनुभव कराओ। किससे? चलन और चेहरे से, अर्थात कर्म से, बिहेवियर से। तो ये तीन प्रकार की सेवा अलग अलग करनी है कि एक साथ? बाबा ने कहा इकट्ठी करनी है। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है, समय की नजाकत को समझो, समय बहुत ही कम है, इसके लिए तीनों एक साथ करना पड़ेगा। छठवां, सबसे सहज सेवा का साधन वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन से वायुमंडल। चेक करो कि हमने अपनी वृत्ति में किसी के लिए निगेटिव उल्टी वृत्ति तो समा के नहीं रखी है, व्यर्थ तो नहीं समा के रखा है, क्योंकि जो हमारी वृत्ति में होगा वो उस तक कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से पहुंचना जरूर है। हम उसे कहना जरूरत नहीं है कहने की, पर हमारे मन में किसी के प्रति बहुत गहरी घृणा है, निगेटिविटी है, एक दिन वो उस तक जरूर पहुंचेगी। वो भावना पहुंच रही है, अभी भी पहुंच रही है। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, एक राज्य में एक राजा, बहुत बड़ा राज्य, और उसी गांव में उसका एक मित्र बचपन का, पर अभी वो लकड़हारा है, चंदन है उसके पास लकड़ियां, कमाई नहीं हो रही है। एक बार सोचने लगता है अगर ये राजा मर जाए ना तो मेरी कितनी लकड़ियां बिक जाएगी, पैसा बहुत मिलेगा। उसने राजा को कहा नहीं, केवल सोचा। उधर राजा सोच रहा है मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, पर ये जो मेरा दोस्त है इतनी लकड़ियां लेके बैठा है, वो सारा राजकोष में आ गई तो अच्छा हो कि ये मर जाए। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, पर इधर इसने सोचना चालू किया, उधर उसने सोचना चालू किया, दोनों मिले और फिर आपस की बात बताई, ये ऐसा ऐसा मैंने सोचा। राजा ने पहले कहा, उसने कहा कि मैंने भी ऐसा सोचा, शायद इसलिए आपने सोचा। न्यूटन्स लॉ, जो विचार हम कर रहे हैं वो वहां पहुंच रहा है। हम निगेटिव सोच रहे एक व्यक्ति के बारे में कि वो ठीक नहीं है, उसको सुधरना चाहिए, उसको ऐसा, उसको वैसा, उसको ये, उसको वो, पर उसमें कल्याण की भावना कम है, निगेटिव ज्यादा है, तो वो उस तक पहुंचेगी। बाबा ने कहा तो क्या इसका मतलब ये है? बाबा को बच्चे कहते, बाबा आपको ये पूरी बात पता नहीं है, बाबा को तो आपसे पहले पता है, बाप तो जानते हैं, ये आपसे पहले जानते हैं कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग को रॉन्ग कहना, बाबा ये नहीं कह रहे कि रॉन्ग को राइट कहो, पता है, दिख रहा है आमने सामने, एकदम सामने दिख रहा है, सामने कोई श्रीमत तोड़ रहा है। परंतु क्या करो, दिल में नहीं समाओ, वृत्ति में नहीं जाने दो उसको, उस व्यक्ति के प्रति इतना निगेटिव नहीं हो जाओ, उसकी निगेटिव बात अंदर नहीं जाने दो। वो देख लिया, हो सकता है माया के वश है, उस समय क्रोध कर रहा है महाज्ञानी, तो माया के वश है, क्या कर सकते। अचानक कोई कुछ निर्णय ले लेता है, बहुत सारी चीजें उसके पीछे चलती है, तभी कोई कोई निर्णय लेता है। तो रहम दिल, तो वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। कोई भी निगेटिव वृत्ति ना हो, बाबा ने कहा मन में कोई भी निगेटिव संकल्प ना हो, निगेटिव है तो उसको निकाल दो, तो निगेटिव। उसके बाद में अगली बात कही, होमवर्क। पिछली बार होमवर्क दिया हुआ तुम सबको याद है? बाबा ने पूछा कौन सा दिया था? दुआ दो दुआ लो, दुआ दो और दुआ लो, दुआ देना अर्थात सबके लिए शुभ भावना रखना, और दुआ लेना अर्थात सबकी सेवा करना। दुआ कैसे ली जाती है? बाप से दुआ कैसे ली जाती है? श्रीमत पर चलकर। ब्राह्मण परिवार से दुआ कैसे ली जाती है? सेवा करके। बाहर की आत्माओं से दुआ कैसे ली जाती है? सेवा कर उनकी। ओबीडियंस, सीनियर्स की दुआ, साथियों की दुआ, जूनियर्स की दुआ, स्टूडेंट्स की दुआ, टीचर्स की दुआ, मधुबन निवासियों की दुआ, सबकी, प्रकृति की दुआ, समय की दुआ, हर सबकी दुआएं लेनी है। कैसे ली जाएगी दुआएं? सेवा कर। और दुआएं लेनी कैसी है, दुआएं देनी कैसी है? शुभ भावना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है दीदी, दादी और मम्मा, दोनों को याद किया। दादी ने किसी के लिए भी वृत्ति में निगेटिव नहीं रखा, चाहे किसी ने 99 गलतियां की, पर उसमें एक विशेषता जरूर है। कौन सी? बाप से अटूट प्रेम है उसके मन में, यह विशेषता उसको सबसे ऊपर उठा देती है, उसकी 99 गलतियां कम, यह सबसे बड़ी, क्योंकि उसको भगवान से प्यार है और वो भी अटूट प्यार है। हक है बाबा ने कहा, अधिकार है, हक, इतना प्यार है। इसके लिए इस ब्राह्मण परिवार में हजारों आत्माओं की हजारों कमियां आंखों के सामने दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं आंखें बंद कर लो या ये कहो ये गलती नहीं है या कमी नहीं है, इसने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं। रॉन्ग तो रॉन्ग ही है, राइट राइट है, पर अंदर बिठा के नहीं बैठना है कि इसने एक साल पहले भी ऐसा किया था अब भी ऐसा ही करेगा। ये वो शायद परिवर्तन हो गया एक साल में, हमने पकड़ के रखा है कि ये एक साल पहले प्रोग्राम था ना, ये लेट आया था, मुझे पूरा यकीन है इस बार भी लेट आएगा, पकड़ के रखें ये बात, सारा बदल रहा है और हमने पकड़ के रखा है, इसकी तो आदत ही है ऐसी। परमानेंट किसी के माथे पर स्टैंप नहीं लगा देना है, ठप्पा कि यह ऐसा है, क्योंकि सब बदल रहा है, हर व्यक्ति बदल रहा है यहां पर। तो दुआएं दो, दुआएं लो, और इन दोनों का बाबा ने उदाहरण दिया। तो यहां मुरली पूरी होती है। मुरली में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर कोई बद्दुआए दे तो क्या करो। 8 उत्तर दिए। एक होमवर्क ये भी लिया जा सकता है कि हमारे जो नेगेटिव विचार है उनको पॉजिटिव कैसे करें, एक दूसरा प्रश्न है। जैसे एक व्यक्ति एक बार अपनी डायरी में 4 बातें लिखता है, जो बीत गया है वर्ष उसके बारे में लिखता है। इस वर्ष, बीते हुए वर्ष में मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, बहुत दर्द हुआ और मेरा पूरा 1 महीना वेस्ट हो गया। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा लिखता है, 60 साल की उम्र में मेरी जॉब चली गई जो मैं 30 साल से कर रहा था। उन्होंने सोचा भी नहीं कि इतना पुराना हमारा एम्प्लॉई है, रखना तो चाहिए था थोड़ी देर और। तीसरा वो लिखता है कि मेरा जो बेटा है मेडिकल की एग्जाम देने जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा साल वेस्ट हो गया। मेरा जो बेटा है मेडिकल की एग्जाम देने जा रहा था, उसका पूरा के पूरा साल वेस्ट हो गया। और चौथा वो लिखता है कि अभी मेरा जो जीवन है, अपने शरीर के बारे में लिखता है, अभी घुटनों में दर्द चालू हो गया है, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखता नहीं, शायद बुढ़ापा चालू हो गया। ऐसी 4 बातें लिखता है और पेपर छोड़ देता है। उसकी पत्नी आती है, वो पेपर उठाती है, अंदर लेके जाती है, और वो अलग 4 बातें लिख के वापस लेके आती है। और वो 4 बातें ये लिखती है, पहला, वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा था, अच्छा हो गया, वो निकल गया ऑपरेशन से। दूसरा वो लिखती है, अच्छा हो गया मैं रिटायर हो गया, अब मैं वो कर सकूंगा जो मुझे हमेशा करने की इच्छा थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है। तीसरा वो लिखती है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हो गया, कम से वो गाड़ी डैमेज होगी पर वो तो बच गया। तीसरा। चौथा वो लिखती है कि ये बुढ़ापे की बात है, वो कहती है अच्छा है अभी इस बुढ़ापे में मैं भगवान का ज्ञान चिंतन मनन साधन भजन भक्ति करूंगा, अच्छा ही हुआ, और वो पेपर छोड़ के जाती है। तो वो उसके 4 विचार और ये इसके 4 विचार, परिस्थिति वही है, नजरिया दृष्टिकोण अलग अलग है, एक ही चीज को देखने का। जैसे वो मच्छर पहली बार उड़ने निकलता है, मच्छर बेबी मस्किटो उड़ के निकल के आता है और अपने पिताजी से कहता है, डैडी डैडी मैं उड़ के आया हूं। डैडी पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ? वो कहता है कि जब मैं उड़ा सब दुनिया ने ताली बजाई। कितनी मेरी तारीफ की, मेरी उड़ान की सारी दुनिया ने प्रशंसा की, जब मैं उड़ा तो सब तालियां बजा रहे थे। कितना अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है। तो क्या समझना है, जब हम उड़ रहे हैं तो मार नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अगर कोई बद्दुआएं दे तो क्या करो। बाबा ने कहा तुमको दुआएं देनी है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति, रूहानी वृत्ति रखो, पर इतना रखने के बावजूद कोई एक तो ऐसा हो गई महारथी, महाहितैषी, शुभ चिंतक, जो हमारे लिए क्या रखे, बद्दुआएं। बद्दुआएं और ब्राह्मणों की बद्दुआएं बहुत लगती है सीधा दिल को जाकर, तो क्या करें। आठ बातें बताइए क्या किया जाए। सबसे पहले तुम जब कोर्स कराते हो तो क्या कहते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव। अब किसका कोर्स कराओ, खुद ही का कोर्स कराओ बैठकर, अपना कोर्स खुद ही कराना, उसको बताना, पूछना तुम कौन, तो मैं फला फला, मेरा ये प्रोफेशन, उसको बना, अरे नहीं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अब हम तुमको बताते हैं तुम क्या हो। फिर उसको पूछना तुम्हारे पिता का नाम, फिर अपने पिता का नाम लेना, ये उसने कहा वो तो शरीर का पिता है, तुम्हारी आत्मा का पिता क्या, अपने आप से बातें करना है। कोर्स किसको कराना है अभी, अपने को, दूसरों को बहुत करा लिया, अब 7 days का कोर्स अपने को सूक्ष्म वतन में बैठ के कराना, ये है। स्वयं को बताना ये कौन सा युग चालू है, उत्तर आएगा कलयुग, उसको कहा नहीं अरे मूर्ख मन, ये कलयुग नहीं है, सबसे स्वीट समय कौन सा है, 4 दिन पहले की मुरली, पुरुषोत्तम संगम युग सबसे स्वीट समय है। तो मन को समझाना, कितना समय बचा है, लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, हजारों वर्ष पड़े हुए, बच्चा है नहीं, बच्चा बच्चा नहीं है, अभी बच्चा हुआ है। तो कोर्स किसको कराना है, अपने आप को कराना है कोर्स। दूसरा, चैलेंज क्या देते हो, चैलेंज क्या देते हो, प्रकृति को हम तमोगुनी, प्रकृति को सतोगुनी बनाने वाले, इतना बड़ा चैलेंज ठोक दिया दुनिया वालों को, बोल दिया ऐसा चैलेंज हम करते, और तुम वृत्ति कैसी हो, वृत्ति में निगेटिव हो तो वाइब्रेशंस क्या जाएंगे और वायुमंडल क्या बनेगा और वही प्रकृति को जाएगा। इसके लिए चाहे कोई बद्दुआ दे, परंतु हमारा इतना बड़ा चैलेंज है तो हमारे वृत्ति में उसके प्रति निगेटिव ना हो, ये दूसरी बात। तीसरा, अगर तुमको कोई चीज दे और तुम ना लो, अगर कोई गंदगी दे तो क्या करते हो, फेंक देते हो, अलमारी में रखते हो, क्या करते हो, जहां गंदगी है तुम्हारा दिल क्या है, बाप का तख्त है, हमारा दिल भगवान का तख्त है, यहां कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वह रहना पसंद नहीं करेगा, भाग जाएगा वो, नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, बहुत नटखट है, ऐसे वैसे घर थोड़ी जाता है वो माखन खाने। जो नवनीत है, जिनका हृदय माखन के समान शुद्ध है, उन्हीं घरों में जाता है वो चोर चोरी करने, चित्त चोर है वो। तो क्या करना है, कोई भी गंदगी को स्वीकार न करना, अर्थात बद्दुआएं दे रहे, कैसे बद्दुआ देते, उदाहरण सुबह सुबह कैसे बद्दुआएं देते एक दूसरे को, थोड़े उदाहरण बद्दुए के उदाहरण, ये तो है ही ऐसा, और नहीं बद्दुआएं थोड़ा, ये कभी नहीं सुधरने वाला, इनको क्यों ज्ञान सुना रहे हो, ये कभी ज्ञान में नहीं आएंगे, फालतू टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये कलराठी जमीन है, जमीन को बद्दुआ दे दी, ये कभी नहीं होने वाला, ये छोड़ दो, हमने सारी कोशिशें कर ली, कभी नहीं होगा ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी नहीं सीखेगा, इसको तो बिल्कुल नहीं आता है। बाबा ने कहा 99 गलती करे फिर भी एक विशेषता तो है, अटूट प्यार, इसकी तो आदत ही है, इसका तो संस्कार ही है, क्या कर सकते, बहुत कड़ा संस्कार है। अरे प्रकृति बदल रही है, सारे युग बदल रहा है, तो संस्कार नहीं बदल सकता उसका, ये तो है ही बुद्धू, कितना भी समझाओ सब कुछ करके हो गया, वही गलतियां बार बार करता है, एक दूसरे को बद्दुआ देते हैं। तो क्या करना है, स्वीकार नहीं करना, यदि हमें कोई कहे ये तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा ठीक नहीं है, जरा अपने आप को सुधारो, तो एकदम ये ठीक नहीं है तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा, जो कोई आके कहे तुम्हें घमंड बहुत है, क्या करोगे? अभी कर रहा हूं कम, ऐसे बोल देना और क्या कर सकते कोई बोलेंगे तुम बहुत अहंकारी हो तुम।
मुझे भी लगता है
तो फिर शांत हो जाए। कोई कहे कि तुम जब भी बोलते हो ना कुछ गलती तो करते ही हो हमेशा, ऐसा बोल दे तो। जब भी तुमको कोई काम दिया जाता है ना उसमें गड़बड़ हमेशा होती है, और आके पूछे हमसे क्या कारण है, ऐसा क्यों करते हो? तीसरा, चौथा, क्षमा के सागर बन जाओ। क्या तुम क्षमा नहीं कर सकते उसको? बाबा ने क्या कहा, क्या बन जाओ? क्षमा के सागर, मास्टर क्षमा के सागर बन जाओ। खुदा भी तो बंदों की गलतियों को माफ करता है, हम नहीं कर सकते? बड़ी बड़ी गलतियां माफ करता है, दरिया दिल है, माफ कर दो। मास्टर माफी का सागर, हम माफ कर दे उसको, हम उसको माफ कर दे। उसके बाद में जड़ चित्र क्या करते हैं, जड़ चित्र दुआएं देते, क्यों? क्योंकि अब हमने दुआएं दी इसलिए जाके मन्नतें मांगते हैं लोग वहां पर, ये दे दो वो दे दो ऐसा दे दो वैसा दे दो, अब तक मांग रहे हैं, वो हमारे चित्र है। तो हमें भी क्या करना है, दुआएं देनी है। उसके बाद में अगर जो भी संपर्क में आए उसको क्या दो, स्नेह दो, सहयोग दो, हिम्मत दो, दुआ दो, उमंग उत्साह दो, कुछ तो लेकर जाए, जो भी आए वो कुछ तो लेकर जाए, ऐसे नहीं चला जाए। और लास्ट निर्वाण को निर्वाण में भेजने की विधि, निवारण मूर्त बन जाओ। क्या बनो? निवारण मूर्त, तभी आत्माओं को निर्वाण भेज सकेंगे। तो कोई अगर बद्दू आए दो दे तो क्या करना है, निवारण, उसको और बढ़ाना नहीं है, उससे उलझ के, उससे झगड़ा करके, आर्गुमेंट करके, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, किस बिना पर बोला, ऐसा क्यों ऐसा कहा, किसने बताया तुमको, किसने फैलाई ये बात मेरे बारे में, क्या कर जाओगे? पता चल गया उसने फैलाई, जाके पूछोगे उससे क्या तुम ही थे क्या वो जो मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलता है? वो कहेंगे मैंने बोला ही नहीं। तो अब क्या करोगे, अब ढूंढोगे कौन है वो जिसने मेरे बारे में ऐसी बात फैलाई? ढूंढने से मिलने वाला है क्या कोई? और वो मिल भी गया तो मानेगा क्या, क्यों मानेगा कोई सामने से? तो क्या कर दो, निवारण मूर्त। छठवा, जो भी आए उसको कुछ ना कुछ दो और भेजो। पांचवा, जड़ चित्र में भी पूजा हो रही है तो हमें अपने आप को इतना ऊंचा रखना है, क्षमा का सागर बनना है। तीसरा, हमारा दिल भगवान का तख्त है, यहां पे कुछ भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, किसी कोई निगेटिव वृत्ति, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई जेलसी, किसी के बारे में दुर्भाव कुभाव अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे जिसने जो किया हो। भगवान को भी तो पता है ना, बाबा ने कहा ना, बाबा को पहले ही पता है ये रॉन्ग है, हमको बाबा को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, बाबा आपको पता नहीं इसने मेरे साथ क्या क्या किया है? बाबा क्या, बाबा बाप दादा उसके बाप दादा को भी जानते हैं उसको क्या वो क्या करने वाला है वो भी पता है उसको, फिर भी तो शांत बैठा है चुपचाप ऊपर। और फिर चैलेंज, तुम्हारा चैलेंज है प्रकृति को बदलना, खुद को नहीं बदल सकते, खुद के विचारों को नहीं बदल सकते। और पहला बताया, कोर्स किसका कराना है, स्वयं का कोर्स कराना है। फिर टीचर्स से मुलाकात में पहली बात, टीचर्स क्या करें, अपने फ्यूचर से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करें, वर्तमान में है तुम फरिश्ता हो और फ्यूचर में है तुम देवता हो, यह पहली बात। बाप दादा को भी नाज है, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, एक सेवा अर्थ, बाबा को नाज है ऐसी बच्चियों पर। संसार में बहुत कुछ कर सकते थे पर वो सब छोड़ के भगवान के यज्ञ में स्वाहा कर दिया, भगवान को भी नाज है। उसके बाद में दूसरी बात, हलचल में नहीं आना, कहां जाना, गहराई में। मछलियां पकड़ने नहीं आए हैं, हीरे मोती जवाहरात नीचे। और तीसरी बात, पांच स्वरूपों का अभ्यास क्या करो, एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो, बार बार ये ड्रिल करते रहना है दिन भर में। तो पूरी मुरली का सार, दुआएं दो दुआ लो, पूरी मुरली का सार दिल, दिल तख्त बाबा के लिए है, इसमें गंदगी ना हो, पूरी मुरली का सार एक्सरसाइज करते रहना, पूरी मुरली का सार कोई दुआ बद दुआएं दो तो ये सारी चीजें करना, पूरी मुरली का सार हाँ, तीन प्रकार की सेवा करनी है, और मुरली का सार वृत्ति को श्रेष्ठ रखना है, मुरली का सार डेट फिक्स करनी है, अपनी डेट फिक्स करनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है पुरुषार्थ का, और तीव्रता, तीव्रता में क्या लाना है, दृढ़ता लाना है, और मुरली का सार समय बहुत कम है, बाबा ने कहा समय बहुत कम है, क्या करो, वृद्धि से वाइब्रेशंस फैला, और कंबाइंड रहो बाबा के साथ, कंबाइंड रहो और गहराई में जाओ, कोई भी चीज को ऊपर ऊपर नहीं छोड़ देना है, क्या करना है, गहराई में जाकर देखना है क्या है ये जो परिस्थिति आई, ये जो माया आई, और विजय तुम्हारी निश्चित है, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है बाबा ने कह दिया, इसके लिए डरना नहीं, घबराना नहीं, घबरा जाते हैं हलचल में, और कल्प कल्प के पास हुए, और लक्ष्य ऊंचा रखना है, और लक्ष्य और लक्षण को मिला देना है, जैसा लक्ष्य रखा वैसे ही करना है, फिर मुझे लक्ष्य रखा है कि आज सारे दिन पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसी अनुसार टाइम टेबल बनाना है, कौन सी चीज मेरे टाइम को अपहरण करके लेके चली जाती है, हाईजैक, तो जिसे ढूंढती है तेरी नजर ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत ही कठिन है मगर ना उदास हो मेरे हम सफर, कभी ढूंढ लेगा ये कारवा वो नई जमीन नया आसमां, ना उदास हो मेरे हम सफर। ओम शांति।
नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें, मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर।